लगी तपस्या की अग्नि और जली योग की ज्वाला। जीवन आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि शुद्धि की अग्नि परीक्षा की घड़ियां हैं आई। व्यर्थ विकल्पों की बीमारी लेने लगी विदाई। विस्मृत होने लगी पुरानी दुनिया दैहिक भान। होने लगे प्रयोग योग के नित नव अनुसंधान। इस तप से ही स्वर्णिम युग का तेज निखरने वाला। आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि पर हुआ नियंत्रण संस्कार परिशोधन। शिव से कर तादात्म स्वयं का करते निज संशोधन। चिंतन लगा चमकने चित की चंचलता कुम्हलाई। निर्बलता पर निर्मलता ने विजय श्री है पाई। वाह तपस्या तेरा अनुभव रस भी बड़ा निराला। आंगन में शुचिता का होने लगा उजाला। लगी तपस्या की अग्नि अटल तपस्या यही है जिससे सारे विघ्न टलेंगे। भव भय बंध मिटेंगे मैपन के सब अस्थि गलेंगे। पंच तत्व परिवर्तन होंगे निज को जब बदलेंगे। सूक्ष्म फरिश्ते हंसते गाते प्यारे वतन चलेंगे। आपके बल से सतयुग आने वाला जीवन आंगन में शुचिता का होनी लगा उजाला लगी तपस्या की अग्नि
ओम शांति। अपने तपस्वी जीवन से दिव्यता का दर्शन कराने वाले आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी आज हमारे बीच पधारे हैं। भाई जी का स्वागत एक हाथ हिलाकर हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप नागपुर की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। तब से यह जुनून दिलो दिमाग में सवार है कि इस ईश्वरीय पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है, इसलिए ज्ञान की गहराई में भी खूब उतरे और खूब योग के एक्सपेरिमेंट्स भी किए। 1976 आपके जीवन का बस स्वर्णिम अवसर बना जब आप मधुबन में आकर अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया और आते ही आपको शिव भोलेनाथ के भंडारे की टोली किचन की सेवा मिली। आज वर्तमान में तीनों कॉम्प्लेक्स के टोली किचन आपके निर्देशन पर चलते हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार आपको टोली वाले आत्म प्रकाश भाई के नाम से जानते हैं, तो पूरे ब्राह्मण परिवार को टोली खिलाकर तृप्त भी किया है और साथ साथ अनेक आत्माओं को टोली खिलाकर बाबा के साथ जोड़ने के भी निमित्त बने हैं। इतना ही नहीं, लेकिन बाबा की मीठी बोली को भी बहुत सरल कर हमारे सामने रखते हैं ताकि हम ब्राह्मण परिवार उसे सहज समझ अपने जीवन में धारण कर सके और ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने के लिए भी भाई जी सदैव तैयार रहते हैं। अव्यक्त बाप दादा ने आपको विशेष वरदान देते हुए कहा है कि आपने अपना ऑक्यूपेशन बना है बाप के साथ विश्व परिवर्तन करने का, तो विश्व परिवर्तन करने के लिए बाबा ने आपको पूरे विश्व में भ्रमण भी करवाया। आज दिन तक आपने 95 देशों का भ्रमण कर जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाया और जल्द ही 100 देश भी पूरा करने वाले हैं। भाई जी आपने अनेक आर्टिकल्स लिखे हैं जो पत्रिकाओं में छपते रहते हैं, रेडियो में आपके इंटरव्यूज आते रहते हैं और आपके लेक्चर्स पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी प्रसारित होते रहे। आप यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है, तो ऐसे प्रतिभावान महान विभूति आज हमारे बीच में है। आज का विषय है ज्वाला रूप व्याध और विकर्म विनाश, तो इस पर प्रकाश डालेंगे आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी।
ओम शांति। वर्तमान समय बाबा का इशारा है, ज्वाला रूप याद को बढ़ाते चलो। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। कारण क्या है? पहला कारण है, इतने जन्मों का हमारा विकर्मों का बोझ है उसको खत्म करना है। पापों का जो इस कर्म है बोझ है उसको खत्म करना है। और जब हम कारोबार में आते हैं कभी कभी विकारों के अंश दिखाई देते हैं, कभी रोब आ जाता है, कभी फीलिंग आ जाती है, कभी उत्तेजित हो जाते हैं। तो मोटे रूप से हमने विकारों को जीत तो लिया है, लेकिन विकारों के अंश अभी भी आत्मा में है, उनको हमने जड़ से खत्म करना है। और उसके लिए ज्वाला रूप याद की ही आवश्यकता है। तीसरी बात, आगे चलकर हम बच्चों को अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का दान देना होगा, तो हमारे पास शक्तियों का स्टॉक होना बहुत जरूरी है। शक्तियों का स्टॉक अगर नहीं होगा तो अनेक आत्माओं की सेवा हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी अमृत वेले और नमा शाम के योगाभ्यास में थोड़ी शक्तियां जरूर जमा कर लेते हैं, लेकिन सारे दिन भर में कितने संकल्प हमारे मन में चलते हैं उसके माध्यम से वो शक्तियां खर्च भी हो जाती है, बैलेंस नहीं। जब तक जमा का खाता हमारे पास नहीं होगा तब तक अनेक आत्माओं की सेवा हम नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास से ही वो संभव है। तो अभी ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए हमें कौन से पुरुषार्थ के ठोस कदम उठाने होंगे, उसके लिए पांच बातों पर हमें दिल से अभ्यास करना होगा। अगर उन पांच बातों पर अभ्यास करते जाएंगे तो योगाभ्यास आपका धीरे धीरे शक्तिशाली होता जाएगा। सबसे पहली बात है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति की आवश्यकता है। बहुत गहराई की आत्म अनुभूति अर्थात इस शरीर का भान बिल्कुल न रहे, आत्मा के भान में हम डूब जाए, खो जाए। जब तक खुद में खोते नहीं हैं तब तक खुदा की याद में नहीं खो सकते। जितना खुद को देखते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसलिए एकांत में बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति को हमें बहुत बढ़ाना जरूरी है। हम थोड़ा सा ज्ञान में पुराने हो जाते हैं तो हमें अहंकार आता है, ये आत्मा आत्मा ये नयों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये सूक्ष्म अहंकार हमें उस पर मेहनत करने नहीं देता है। परिणाम स्वरूप हम आगे बढ़ते जाते हैं और स्थिति हमारी लड़खड़ाती रहती है। तो बाबा का बच्चा बनने के बाद एक बात हमें रियलाइज करना है, ये आत्मा का पाठ यही पहला पाठ है, यही अंतिम पाठ है और यही सबसे महत्वपूर्ण पाठ है। बाबा ने एक बार कहा था, आत्मा के अभ्यास से आपके नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। रेस हमारी है योगाभ्यास में, नंबर आगे लेना है तो उसके लिए आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से गहराई से बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो जितनी जितनी आत्मा की अनुभूति बढ़ती जाएगी, देह का भान मिटता जाएगा। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना, अर्थात 100% आत्मा का भान हो और 0% देह का भान हो, ये हमारी मंजिल है। तो इसके लिए बहुत गहराई की आत्म अनुभूति को बढ़ाते जाना है और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को भी बढ़ाना जरूरी है। जब हम बाबा को याद करते हैं, परमधाम में बाबा के पास बैठते हैं, तो हमारे मन की बैठक शक्तिशाली हो। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे शक्तिशाली बैठक में हम बैठते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होता है और बाबा जो आध्यात्मिक शक्तियों के पावर हाउस हैं, उनसे हम बहुत शक्तियां ग्रहण करते हैं। परिणाम स्वरूप ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति हमें होती है। अमृत वेले ऐसे शक्तिशाली आत्म अनुभूति में हमें बाबा के पास बैठना है। साधारण बैठक हमारी मन की ना हो, पहली बात। दूसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति को बढ़ाने के लिए बहुत शक्तिशाली और बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति को बढ़ाते जाना जरूरी है। बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति करना, अर्थात बाबा के शक्ति स्वरूप को अनुभव करना। हमने बाबा कह के बाबा को ऑर्डिनरी कर दिया, वो तो मेरा बाबा है। अरे बाबा तो है, लेकिन कौन सी वो हस्ती है जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर तीनों लोगों की कारोबार चलती है। बाबा ने कहा हरेक आत्माओं को मैंने पार्ट दिया है, जो पार्ट दिया है वो अपना बजा रहे हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इतनी बड़ी हस्ती है वो, दुनिया वाले कहते हैं ये वृक्ष के जो पत्ते हिलते हैं वो भी उसके इशारे के बिना नहीं हिल सकते। तो ये हरे वृक्ष के पत्तों की बात नहीं है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की बात है। मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के हम जो आत्माओं रूपी पत्ते हैं, एक कदम भी हम अपने स्वीकृति अनुसार नहीं उठा सकते हैं। इसलिए कहते हैं हम इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर कठपुतलियां हैं, हमारी बुद्धि रूपी रस्सी उसके हाथ में है। जैसे वो हमें नचाता है वैसे हम नाचते हैं, वैसे हम सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब है बाबा का जो स्वरूप है परम धाम में ज्ञान सूर्य के रूप में बहुत शक्तिशाली देखना है और अनुभव करना है। जब अर्जुन को परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा था तो अर्जुन ने वर्णन किया कि परमात्मा का स्वरूप इतना तेजोमय है, इतना तेजोमय है, इस सूर्य से साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना तेजोमय है। हजारों गुना तेजोमय तो नहीं है, लेकिन हजारों गुना शक्तिशाली जरूर है। ऐसे हजार सूर्य भी वो पैदा कर सकता है, इतनी पावर उनके पास है। तो इसलिए हमने बाबा का स्वरूप बहुत शक्तिशाली अनुभव करना है। मई या अप्रैल मास में इस सूर्य की रोशनी में एक मिनट भी नहीं खड़ा हो सकते हैं। जैसे खड़ा होते हैं इतनी धूप कड़ी होती है, हम एक मिनट के बाद ये ऐसा कहने लगते हैं मेरा स्किन जल रही है, इतनी गर्मी होती है जो हम सहन नहीं कर पाते। ये इस सूर्य की बात है। तो वो सूर्य तो इसका बाप है, इसको पैदा करने वाला वही सूर्य है, तो कितना शक्तिशाली होगा आप सोच सकते हैं। तो कहने का भाव है, परम धाम में हमने बाबा का शक्तिशाली स्वरूप बहुत अच्छी तरह से देखना है और अनुभव करना है कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती है, सर्वोच्च जो सत्ता है वो मेरे सामने बैठी है, और शक्तिशाली स्वरूप को अनुभव करना है और देखना है। बाबा के शक्तिशाली स्वरूप को जब देखते हैं तो बाबा का मन कितना शक्तिशाली है, बुद्धि कितनी पवित्र है, कितनी विशाल है, संस्कार भी बाबा के कितने रॉयल हैं, जेंटल हैं, गजब की पर्सनालिटी बाबा की है, ऐसी पर्सनालिटी बाबा की हम समीपता से देखें, बहुत समीप जाकर बैठें। कई समझते हैं कि बाबा तो पवित्रता के सागर हैं, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज हैं, मैं बाबा के समीप बैठ सकती हूं या नहीं, थोड़ा ही चकते हैं। हमें बड़े ठाट से बाबा के बाजू में बैठना है, हमारा अधिकार है, बाबा ने हमें सजनियों के रूप में स्वीकार किया है, आत्मा रूपी सजनी कैसी भी हो उसको अपने शिव साजन के समीप बैठने का अधिकार है। बाबा ने हमें बच्चों के रूप में अधिकार स्वीकार किया है, बच्चा कैसा भी हो लेकिन बच्चे को अपने बाप के गोदी में ही नहीं कंधे पर भी बैठने का अधिकार है। इसलिए बड़े ठाट से, बड़े मस्ती से बाबा के पास बैठना है, हिचकना नहीं है। ताली तो बजाओ जरा। आप देखो बाबा के घर में, बाबा के गोदी में बैठे हैं मधुबन, सारी दुनिया में, विश्व के ग्लोब में सबसे पावरफुल स्थान ये मधुबन है, जहां आप भाग्यशाली आत्माएं पहुंचे हैं गहन तपस्या करने के लिए। बहुत महान आत्माएं आप सभी हैं। नीचे आते हैं तो दो घंटे के लिए चार धाम करके चले जाते हैं, तीन चार दिन इस धरनी पर रहना ये बहुत ही श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो हमें बाबा का शक्तिशाली स्वरूप देखना है और बहुत नजदीक से अनुभव करना है। तीसरी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने के लिए हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो तो परमात्म मिलन का आनंद कुछ और ही आता है, उसका मजा ही कुछ और आता है, उसका अनुभव ही कुछ निराला होता है। भगवान से मिल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता है उससे हम मिलन मना रहे हैं, तो हमारा मन और बुद्धि कितनी खुशी से भरपूर हो, कितना नशे से भरपूर हो। अगर प्राइम मिनिस्टर के साथ आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, सवेरे से उछलने लगते हैं, अरे ये तो केवल भारत का प्राइम मिनिस्टर है, ये तो तीनों लोगों का प्राइम मिनिस्टर है, कितनी खुशी आपको होनी चाहिए। तो जब बाबा के पास हम बैठते हैं तो हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से भरपूर हो तो परमात्म मिलन का मजा ही कुछ और आता है। लेकिन जब बाबा के पास बैठते हैं तो ऐसी खुशी, ऐसी मस्ती, ऐसा नशा अनुभव हो उसके लिए सारे दिन भर में समान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है। हम सभी बहुत रॉयल आत्माएं बैठे हैं, इस सभा में एक भी आत्मा साधारण नहीं है। राजे महाराजे होन महार रानी महारानियां बैठी हैं, इसलिए बाबा ने संगम युग में हमें समान का सिंहासन दिया है। उस सिंहासन पर हमें डटे रहना है, बैठे रहना है और सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे की, ईश्वरीय खुशी की अनुभूति करते जाना है। तब जब हम बाबा के पास बैठेंगे तो ईश्वरीय मिलन का आनंद हमें भरपूर आएगा और बहुत सुंदर गहन अनुभव हमें होते रखेंगे। अमृत वेले हम उठते हैं, योग में बैठते हैं तो सोचते हैं अभी मुझे योग करना है, एक घंटा करना है। बार बार घड़ी को देखते हैं, एक घंटा, बापरे बापरे, ये लाल लाइट में एक घंटा। तो उस समय हमें सोचना है, मैं योग करने के लिए नहीं बैठी हूँ, मैं दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के लिए, मेरी अपॉइंटमेंट है, उस अपॉइंटमेंट का आनंद लेने के लिए मैं आत्मा बैठी हूँ। फिर आप देखना कितने सुंदर अनुभव बाबा आपको कराते हैं, समझा। इसलिए शुरू में बैठते समय ही आपकी खुशी, आपकी मस्ती अगर होगी तो एक घंटा अमृत वेले का ऐसा जाएगा, ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी चला गया, पांच जल्दी बज गए, है ना। अमृत वेले शक्तियों का अमृत हमें बाबा से मिलता है ना। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, ऐसे ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास की अनुभूति करने के लिए हमारा मन में, हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। क्योंकि प्यार एक ऐसी दुनिया की चुंबकीय शक्ति है जो हमारे और बाबा के बीच में हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त कर देते हैं। और न केवल हमें आमने सामने की अनुभूति कर होती है, लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें ये प्यार कराता है। इसलिए दिन प्रतिदिन हमारे दिल में परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बढ़ता रहे, तो ऐसी शक्तिशाली अनुभूति हमें होती है। माताएं अमृत वेले बाबा से बहुत बातें करती हैं, प्यार से बातें करती है, बाबा मैं तो बहुत लाडली बच्ची हूँ, आप तो शक्तियों के सागर है बाबा, मुझे थोड़ी सी शक्ति दो ना बाबा, आपको कुछ कम नहीं होगा बाबा, मुझे शक्ति दो ना। तो प्रेम स्वरूप याद हमने जरूर करना है, लेकिन सारा समय प्रेम स्वरूप याद में ही नहीं हमें बिताना है। प्रेम तो एक माध्यम है आत्मा और परमात्मा के कनेक्शन का, तो उस माध्यम को बढ़ाना है, लेकिन हमने लेना शक्तियां हैं, सर्व शक्तियों के जो सागर हैं उनसे हमने शक्तियां लेना है। तो इसलिए प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा तो प्यार के सागर में हम डूब जा देंगे और कंबाइन अनुभूति हम करेंगे। और जब कंबाइन अनुभव करते हैं तो लवफुल याद जो है पावरफुल याद में स्वतः परिवर्तन होती है। अगर मैं जलता हुआ कोयला हाथ में पकड़ता हूं, लाल जलता हुआ कोयला, तो पट से मेरा हाथ जल जाएगा। तो इससे ज्ञान सूर्य परमात्मा को हम प्यार के आधार से कंबाइन अनुभव करते हैं तो लवफुल याद शक्ति स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन होती है और ऐसे ज्वाला रूप याद का अनुभव हमें बहुत अच्छी तरह से होती है। इसलिए दिन प्रतिदिन प्यार हमारे दिल में बाबा के प्रति बढ़ता रहे। आप कहेंगे हमारा प्यार तो है भाई बाबा से, तभी तो यहाँ आए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबा चाहता है जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, सच्चा प्यार जो दादियों में देखा गया। जब दादियां बाबा को स्टेज पर मिलती थी, बाबा उनको बाहों में लेता था और दादियां भी बाहों में समा लेती थी, क्या था उनके पास, उनके रोम रोम में, रग रग में केवल परमात्म प्यार था। तो ऐसा सच्चा प्यार, हड्डी प्यार हमारा भी बाबा के प्रति बढ़ता रहे। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार के साथ रहना है, सबके साथ प्यार से रहना है, लेकिन सच्चा प्यार केवल एक बाबा के साथ हो। लिखो पांच बातें, लिखो ये पांच बातें प्यार के बारे में लिखेंगे ना, भूल से भी किसी से प्यार नहीं करोगे, किसी से प्यार शेयर ही नहीं करोगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने केवल धोखे ही खाए, कड़वे अनुभव किए, माया ने हमें फुटबॉल बना के पांचों खिलाड़ियों ने ऐसा लताड़ा ऐसा पीटा कहीं का नहीं रखा। कितने कड़वे अनुभव किए हमने द्वापर युग से। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोगों ने यहां तक कह दिया है, परमात्मा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उनका अंत तो पा सकते हैं, लेकिन मनुष्यात्माओं का अंत पाना बहुत मुश्किल, यहां तक कह दिया। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितनी कंडीशन और कितने कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब किसी से प्यार होता है तो सारा चिट्ठा लिख के देते, ये मेरी कंडीशन है, कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हैं। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन ही नहीं है। बोली बोली माताएं, देखो गांव की बोली बोली माताएं उस भोला नाथ का दिल जीतकर यहां बैठी है। भाई ताली तो बजाओ जरा, बोली बोली माताओं के लिए। हमारे बाबा कहते मुझे केवल सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी। भाइयों ने माताओं को बदनाम कर दिया है, माताएं बहुत भोली होती है, उनको घर का भेद कभी नहीं बताना, बताते ही फट से पड़ोसी के पास जाके वो फट से बता देती हैं, उनको घर का भेद नहीं बताना। बताओ माताओं को बदनाम कर दिया। भगवान ने माताओं के सिर पर ही ज्ञान का कलश रखा है, भाइयों के सिर पर नहीं रखा है। भाई भाई माताओं पर रखा है, क्योंकि माताएं अंदर बाहर साफ दिल की होती है, भाई थोड़े से डिप्लोमेटिक होते हैं, जरा अंदर कुछ बाहर कुछ होते हैं। तो इसलिए सच्चाई बाबा चाहते हैं, हेरा फेरी नहीं चाहिए मुझे, दिल में सच्चाई चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है, इनका तो हद का प्यार है, वो गागर प्यार है, वो भी खाली है, उछल रही है, क्या प्यार करेंगे, ये तो सागर है प्यार का। और स्वार्थ के बिना इस संसार में कोई भी किसी से प्यार नहीं करता है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है, जहां स्वार्थ होता है किसी किसी को पहचानता तक नहीं है। केवल एक ही परमात्मा है जो निस्वार्थ प्यार हमसे करते हैं। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है। देता है मनुष्य, गेट्स एंड फॉरगेट, लेता है और भूल जाता है, परमात्मा गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है ना। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इम्प्योर बनाता आया, नीचे गिराता आया है। ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का हाथ ही पकड़ना होगा, वही ऊपर वाला ऊपर उठाएगा, ये नीचे वालों ने तो नीचे गिरा दिया। केवल परमात्म प्यार ही हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराता है और प्योर बनाता है। संगम युग है आत्मा को प्योर बनाने का और चढ़ती कला की अनुभूति करने का, वो परमात्म प्यार ही हमें कराता है। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। ये तो थर्ड फ्लोर है, टॉप क्वालिटी की आत्मा टॉप फ्लोर पर रहती है, ये तो थर्ड फ्लोर है, माया की दुनिया है, घटिया दुनिया है, ये गेस्ट हाउस है। असली रेस्ट हाउस जो है ना हमारा परम धाम है। रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस कितना भी बढ़िया हो, सोने के चमचमाते दरवाजे हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी चैन की नींद आपको अपने घर में ही आएगी। खराटे अपने घर में ही लगाओ कि गेस्ट हाउस में नहीं होगा। तो रेस्ट हाउस हमारा परम धाम है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है परमात्म प्यार। इसलिए परमात्म प्यार मेरे दिल में सदा बढ़ता रहे। हमारा प्यार इधर उधर बटा हुआ है, दिल के टुकड़े हजार हो गए, कहीं कहीं गिरा, कोई कहां गिरा, ये हालत हमारी है। जो बटा हुआ प्यार है उसको बटोरना है और एक ठिकाने पर ठाकुर बनकर लगाना है। बाबा कहते हैं बुद्धि को आपने द्वापर युग से बहुत भटकाया, अभी थोड़ा बुद्धि पर रहम करो और एक ठिकाने पर उसको बिठा दो और बाबा के पास मस्ती से खो जाओ। जब तक खो जाना नहीं तब तक खजाना नहीं प्राप्त हो सकता है। खुद में और खुदा में खो जाएं तो हमें खजाना मिलता जाता है। इसलिए परमात्म प्यार हमारे दिल में सदा बढ़ता रहे, उसको अगर चेक करना है तो हमें एकांत में बैठना है और चेक करना है। कोई ऐसा स्थान तो नहीं है, कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं है, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है, उसको हमने चेक करना है। अगर ऐसा कोई स्थान है भी तो वहां से हटाना है और बाबा के तरफ जुटाना है। माताओं को कहां जाना है, कौन सी दुनिया में जाना है? मोहना। किसकी दुनिया में जाना है? मोहन की दुनिया में जाना है तो मोह को नष्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे वो जाएंगे? कृष्ण के साथ रास करना है या कृष्ण को गैलरी से देखना है केवल? तो उसके साथ रास करना है तो उनके जैसा मोहन को बनना पड़ेगा, मोह को जीतना पड़ेगा। माया ने मोह का ताज बना दिया है हमें, और उस ताज को उतारना होगा और मोह को खत्म करना होगा और एक ही बाप के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति बढ़ानी होगी, है ना? पांचवी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात ज्वाला रूप योग की ये पांचवी है। योगाभ्यास में जब हम बैठते हैं तो उसमें संपूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता के बिना ऐसे ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति नहीं हो सकती है। उसमें स्पष्ट उदाहरण है, मेरे हाथ में कागज का पेपर है, मैं मास की धूप है सूर्य की, उस सूर्य की रोशनी में मैं जलाना उसको चाहता हूँ। 10 दिन से मैंने छत पर रखा है, नहीं जल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर वो कागज के पेपर को मुझे जलाना है तो उसके लिए मैग्निफाइंस की मदद लेनी होगी, धूप में बैठना होगा, कागज के ऊपर वो मैग्निफाइंग लेंस को पकड़ना होगा। तो जो सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं, उससे जब पास होती है तो लेजर किरणें होती हैं और वो लेजर किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ एक बिंदु पर पड़ती हैं, तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और अग्नि का रूप लेती है और उसमें पेपर भस्म हो जाता है, जल जाता है सेकंड में, है ना? तो ऐसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को हम बुद्धि रूपी नेत्र से जब देखते हैं तो ज्ञान सूर्य की किरणें बुद्धि रूपी लेंस के द्वारा पास होती है तो लेजर किरणें होती है, शक्तिशाली होती है और ऐसी किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और योग की ज्वाला धधकने लगती है और ऐसी योग की ज्वाला में हमारे कड़े संस्कार है विकर्म भस्म हो जाते हैं, जितने कठोर संस्कार है वो भी परिवर्तन होते हैं। पांचों विकारों से संबंधित बड़े कड़े संस्कार हैं, बहुत बड़े विकर्म हमारे पास हैं, उनको हमने भस्म करना है। कई कहते हैं भाई बाबा को तो हम याद तो करते हैं लेकिन पता नहीं विकर्म भस्म होते भी हैं या नहीं होते हैं, ऐसा कभी कभी संकल्प आता है।
किसी किसी को आता है। संपूर्ण एकाग्रता से योगाभ्यास हम सभी ने, बाबा के बच्चों ने की है, हर क्लब की है, केवल उसको हमने दोहराना है। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में शास्त्रों में भी गाई जाती है, हम बाबा के बच्चों ने संपूर्ण एकाग्रता के साथ ऐसी योग की साधना की है, उसकी यादगार शास्त्रों में कौन सी है बताइए। यादगार है गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को और सहपाठियों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, किसी विशेष लक्ष्य पर धनुर्विद्या माना धनुष बाण को मारना, और उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए, उसके लिए क्या किया, वृक्ष की डाल पर एक आर्टिफिशियल पंछी को टांगा और उनको लक्ष्य दिया कि पंछी की आंख जो है, उस आंख की काली पुतली है, उस पर आपने तीर मारना है। ये लक्ष्य दिया उनको, अर्जुन को और सहपाठियों को। जब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए तो द्रोणाचार्य जी ने बुलाया, आओ सहपाठी इधर आओ, आपको क्या दिखाई देता है। उन्होंने कहा, हाँ वो आग भी दिखाई दे रही, डाल भी दिखाई दे रही, पंछी भी दिखाई दे रही। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अर्जुन आओ इधर। अर्जुन को कहा कि क्या दिखाई देता है, अर्जुन कहते हैं मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, केवल और केवल वो पुतली, आई बॉल, काली पुतली आंख की नजर आ रही है। उसने फिर तीर मारा, लक्ष्य को भेदा और पांच वितानर हो गया। उसका नाम क्या था, अर्जुन। या अर्जुन फर्जुन कोई होकर नहीं गया, सारे अर्जुन यहां बैठे हैं, बाबा के बच्चे सारे बैठे। मेहनत हमने किया और उनको माल मसाला मिल गया लिखने के लिए, मेहनत हमने की, बताओ। तो कोई हमें नई बात नहीं करना है, केवल उसको दोहराना है। संपूर्ण एकाग्रता के साथ ऐसी योग की साधना करके ज्वाला रूप योगाभ्यास को अनुभव करना है। कई बार संकल्प कभी कभी किसी किसी बच्चों को आता है कि पता नहीं परम धाम कितना दूर है, पता नहीं कौन से कोने में बाबा बिंदी बैठा है। अब मैं बच्चा बाबा को याद तो करता हूं, लेकिन पता नहीं मेरी याद बाबा को पास पहुंचती भी है या नहीं, पता नहीं। पर वे ऐसा संकल्प कभी आता है किसी को, ऐसा संशय आता है क्या, सच सच बोलो, बोलो हाँ या ना, सच बोलना, ऐसे नहीं बोलना, पक्की बात, परमधाम है भी वहां, चलो कोई बात नहीं मान लेते हैं। अब परमधाम में कौन से कोने में बाबा बैठा है ये भी पता नहीं। जब मैं ज्ञान में आया 3 साल तक मेरा ये डाउट रहा, उसके कारण योगाभ्यास में मजा ही नहीं आती थी मुझे। जब योग में बैठने के लिए दीदी कहती थी ना, भाग जाता था चुपचाप, क्या करेंगे बैठ के यहां। लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को देखना और मन से उनके प्रति संकल्प सोचना, इस विधि को मैंने अपनाया और हिस्ट्री हॉल में 1977 में बाबा नीचे गद्दी पर बैठकर आए थे। 3 मार्च रात को 2 बजे मैं बाबा से सामने बैठ के मिल रहा था। इधर प्रकाश मणि दादी बैठी थी, इधर मोहिनी मन मोहिनी दीदी जी बैठी थी, सामने मैं बैठा था। बाबा ने मुझे दृष्टि दिया, दृष्टि देकर टोली देने के लिए भी सामने हाथ किया, लेकिन टोली न देते हुए हाथ पीछे किया तो मैं थोड़ा घबरा गया, पता नहीं क्या बात है, बाबा टोली मुझे क्यों नहीं दे रहे, कारण क्या है। तो बाबा ने दीदी के तरफ देखा, फिर 2 महावाक्य उच्चारण किए, बच्ची इस बच्चे का योग का चार्ट अच्छा है और इसका नंबर पांडवों में आगे है, ये 2 महावाक्य बाबा ने उच्चारण किए। और वो महावाक्य सुनने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई जिसका कोई ठिकाना नहीं था। क्यों खुशी हुई, क्योंकि मेरे मन में जो डाउट था, मेरी याद बाबा तक पहुंचती थी या नहीं, उसका मुझे प्रमाण मिल गया। जिसको याद कर रहा हूं वो खुद ही कह रहे हैं, याद का चार्ट अच्छा है, नंबर आगे है, माना मेरी याद पहुंचती थी। उसके बाद मेरे मन में कभी भी संशय नहीं आया है, मेरी याद बाबा तक पहुंचती या नहीं। पहुंचती जरूर है। एक दिन का भी बच्चा होगा जैसा भी याद करता है उसकी याद वहां पहुंचती है। लेकिन हमने याद रखना एक बात, याद की यात्रा में प्रेम की मात्रा जास्ती से जास्ती बढ़ती रहे। जितनी प्रेम की मात्रा बढ़ती जाएगी उतनी गहराई की स्थिति की अनुभूति हमें अनुभव होगी। ऐसे ज्वाला रूप योग का अभ्यास हमें अनुभव होगा। तो दिन प्रतिदिन प्यार की मात्रा, प्रेम की मात्रा, प्यार का परसेंटेज योगाभ्यास में बढ़ाते जाएं, तो ऐसी शक्तिशाली योगाभ्यास हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है ना? अभी ज्वाला स्वरूप योग में हमारे विक्रम कैसे भस्म होते हैं? कैसे होते भाई? हाँ जी, कभी कभी संकल्प आता है, होते भी है या नहीं होते है पता नहीं, करती तो मैं याद हूं, और विक्रम हो रहे हैं उसका प्रमाण भी क्या है? ये इस हॉल में हम बाप दादा से मधुबन निवासी 87 में मिल रहे थे। मुरली के बाद बाबा से डायरेक्ट प्रश्न पूछा, बाबा मेरी याद शक्तिशाली है या नहीं, कैसे समझे शक्तिशाली योगाभ्यास की निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती है। शक्तिशाली योगाभ्यास में एक तरफ योग जो है ये अग्नि के रूप में अनुभव होता है, और उस अग्नि में विक्रम भस्म हो रहे हैं ऐसा एहसास भी हमें होता है, और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि विकर्मों का बोझ सिर पर होता है वो खत्म होता है तो हल्कापन अनुभव होता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है, हम अपने संपूर्णता के समीप पहुंचते हैं, इसलिए हमें खुशी भी होती है। तो ऐसी अनुभूति ज्वाला रूप योगाभ्यास में हमें करना जरूरी है ना? एक बात है, मेरे मन में यही संकल्प चलता था, पता नहीं योग से विक्रम भस्म होते भी है या नहीं। एक बार क्या हुआ, मैं आबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था बाय कार। अच्छी कार थी, नई कार थी, लेकिन अचानक बीच में कार रुक गई, और फिर वो कार चलाने वाला भाई कह रहा था, भाई नीचे उतरो, अभी धक्का लगा के गैरेज में ले जाना पड़ेगा। कैसे कैसे हमने धक्का लगा के वहां पहुंचाया। वो मैकेनिकल था, उसने बोनट खोला, बोनट खोलने के बाद में देख रहा है क्या इसमें गड़बड़ है। तो वो गाड़ी चलाने वाला भाई थोड़ा इंजीनियर टाइप माइंड था उसका, वो कहता है भाई ये इंजन इतना गर्म कैसे हो गया, ये पानी इतना कैसे लीकेज हो रहा है। तो मैकेनिकल कहता है भाई देखो मैं मैकेनिकल हूं, आप बैठो चुपचाप, मैं गाड़ी करके ठीक आपको दूंगा, लेकिन मुझे काम तो करने दो ना, शांति से बैठो जाओ ना। उसने एक आधा घंटे के बाद में हमें गाड़ी करके ठीक दे दिया, पैसा ले लिया। ऐसे बाबा कहते हैं आत्मा रूपी कार को परमधाम रूपी गैरेज में ले जाओ, और बाबा जो मैकेनिकल है उसके हवाले कर दो, फिर बाबा ऐसी गाड़ी को ठीक कर देगा, ऑयलिंग पेट्रोलिंग वॉशिंग क्लीनिंग ऐसे विकारों को खत्म करके ऐसे बना देगा जो बाबा कहते एक जन्म तक आपकी कार कहीं रुकेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। विकर्मों को भस्म करना, ये करना, ये मेरा काम है। आपका काम क्या है? आत्मा रूपी कार को गैरेज में, परम धाम रूपी गैरेज में लाना, मेरे हवाले कर देना, बाकी मेरा काम है ना? तो आप विकर्म भस्म हो रहे हैं इसका प्रमाण चाहते हो, देखो ब्रह्मा बाबा है हमारे सामने, हमारी दादिया है, उन्होंने विकर्मों को भस्म किया और वो पवन बन गए, फरिश्ता बन गए, इतने ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं। फिर भी आप प्रमाण चाहते हो, अनुभव कीजिए। जैसे जैसे हल्कापन हमें अनुभव होता है, वास्तव में क्या होता है, जो 63 जन्म हमने विकर्म किए हैं वो निगेटिविटी के रूप में आत्मा में होती है, और ज्ञान सूर्य बाबा को याद करते हैं तो उनसे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और जितनी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उतनी निगेटिविटी खत्म होने लगती है। तो निगेटिविटी खत्म होने लगती है, माना विक्रम हमारे भस्म होते रहते हैं, और जब आत्मा भरपूर पॉजिटिव एनर्जी से होती है तो समझ लो आत्मा पावन बन गई। आत्मा पतित कब बनती है भाई, पावन कब बनती है? पतित जब मैं किसी का पति या कोई मेरा पति, तो पति संकल्प होना चलेंगे। कोई किसी का पति नहीं है, आत्मा आत्मा भाई भाई है। पावन, पा प्लस वन, जब बुद्धि में वन बाबा को पा लेते हैं, बसा लेते हैं, तो समझ लो पावन बन गए। उसके लिए हम यहां बाबा के पास में आए हुए हैं। इसलिए योगाभ्यास को हमें पावरफुल करते जाना है, क्योंकि एक योगाभ्यास में क्या होता है, बाबा कहते हैं मुझे परमधाम रूपी घर में याद करो, मुरली में कहते हैं परमधाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं भाई? उस बाबा को तो हम कहीं पर भी याद कर सकते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं परमधाम रूपी घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। इसका कारण क्या है? तीनों लोगों में परमधाम ही ऐसा स्थान है, बिल्कुल होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान है, जहां कोई प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं है। तो परमात्म मिलन की गहन अनुभूतियां केवल हमें परमधाम में होती है। इसलिए बाबा कहते हैं परमधाम घर को याद करो और घर में मुझे याद करो। ठीक है ना भाई? इसलिए योगाभ्यास को बढ़ाने के लिए जो छठा तत्व परमधाम है, ब्रह्म तत्व है ब्रह्मांड की दुनिया में, वो भी हमारे नजरों के सामने स्पष्ट दिखाई दे, तब हमें ऐसी सुंदर अनुभूति योगाभ्यास की होती है। ठीक है ना? ऐसी अनुभूति करना है, बोलो करना है? करना है क्या? इतने दूर से आप आए, नेपाल से आए, देखो कितने दूर से बाबा के घर में पहुंचे हैं, तो भाई अनुभूति तो करना है ना, क्योंकि बाबा का इशारा है अभी अनुभव की अथॉरिटी बनो। इतना उच्च कोटि का ज्ञान बाबा देते हैं, सत्य ज्ञान के सागर, लेकिन उस ज्ञान का प्रमाण क्या है? सुंदर और गहन अनुभव करना और अनुभव कराना, ये है उसकी ब्यूटी। तो हम बहुत सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं ना? तो सब उठे जाओ, खड़े हो जाओ सभी।
बाबा तो बस। जाने क्या क्या कर डाला, वो दिल की है सुनता सबके, बैठ सामने दिल वाला।
प्रभु मिलन के मस्ती में चमक रहा हर चेहरा,
सभी सीधा बैठेंगे, सीधा ऐसा सीधा, थोड़ा खुला खुला बैठो, किसी को टच नहीं होना चाहिए शरीर, ऐसा थोड़ा बैठो। एक दो आधा घंटा हम अपनी दुनिया में खो जाएंगे, अपनी मस्ती में मस्त हो जाएंगे, ठीक है भाई। ओम शांति, ओम शांति। शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जल रही हूँ, जग मग रही हूँ, मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, मज आत्म ज्योति के चारों ओर सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं आत्म ज्योति पवित्र स्वरूप हूं, पवित्रता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। पवित्रता का सुंदर ताज मज आत्मा ने धारण किया है, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ, भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं, मुझे अपने भाग्य पर नाज है। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्म ज्योति हूं। भाग्य विधाता भगवान ने मुझ आत्मा के भाग्य निर्माण हेतु बेहद का रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। उस बेहद याद रुद्र यज्ञ में मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा सेवा पर उपस्थित हूं। इस बेहद ड्रामा में मैं आत्मा हीरो एक्टर हूं। ड्रामा के डायरेक्टर के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्टर से मुझे हर रोज डायरेक्शन श्रीमत के रूप में मुरली में मिलता ही रहता है। जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनता जा रहा है। इस शरीर तो मेरा मकान है। यह शरीर तो मेरा वस्त्र है। यह शरीर तो मेरा वाहन है व्हीकल है। मेरा असली स्वरूप चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा है। सात गुणों वाला सप्तऋषि आत्मा इस देह रूपी चैतन्य गुफा में बैठकर विधि स्थिति की तपस्या में मगन है। मैं हूं देह से न्यारा केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हो। अष्ट शक्तियों की चमक मजम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा से चारों ओर फैल रही है। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा
चमक रहे हैं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारागण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, ओहो फरिश्तों की दुनिया में पहुंच चुकी हूं, जा चारो सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोज निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली ड्रेस फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी सुंदर हल्की फुल्की ड्रेस है यह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके ब्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का असीम आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। शकील दे बच्चे मैं बेहद खुश हूं, मैंने अपना खोया हुआ लाड़
हजार वर्षों बाद पाया है, मैं भी याद खुश हूं। लाडले बच्चे, इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब भी चाहो, जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो, करते रहो। प्यारे बच्चे, कभी मुझसे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। मेरी अंगुली पकड़कर चलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कभी मुझसे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि सर्वशक्तिवान निराकार भगवान साकार माध्यम से मुझे पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वह रोज दूर देश से आकर ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, मुरली के माध्यम से मधुर शिक्षाओं से मुझे सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दूरंदेशी बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। मेरे नैनों के नूर बच्चे, कवि मसे परम सदगुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान लेते रहो। मेरा वरदहस्त सदा अपने मस्तक पर अनुभव करो। सारे दिन भर मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो। मैंने दिए हुए महामंत्र का अच्छा पा जाप करते रहो। मीठे बच्चे, कभी मुझसे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठो, मेरे साथ
साथ अपने दिल के समाचार की लेन देन करके स्वयं को एकदम लाइट अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो। सचमुच मैं कितनी न नसीबवान आत्मा हूं जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हो। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच चुकी हूं। जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम, शांति धाम, मेरा मूल वतन। ओह, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्यारे, प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को देख रही हूं, निहार रही हूं, जी भर के देख रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नए नौ के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। इस साकारी दुनिया के सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की बरसात, निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रहे हैं, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति, प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की ज्वाला में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं, भस्म होते ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति, स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। मैं आत्म ज्योति, ज्ञान सूर्य को संपूर्ण एकाग्रता के साथ बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, तपती ही जा रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, सचमुच मेरे जीवन के कृष्ण में पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, बाबा बाबा मैंने आपसे अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली बाबा, लेकिन मेरी एक छोटी सी आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही प्यार की अखंड ज्योत सदा जलती रहे। मैं आत्मा योगीन बनकर संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं बाबा, आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्म वतन उड़ती हुई इस साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हो और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुके हूं। मस शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की किरणें सारे विश्व में चारों ओर फैल रही है। फैलती ही जा रही है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से डायरेक्ट परम नाम से शक्तिशाली किरणों का फाउंटेन मौजा आत्म ज्योति पर पड़ रहा है। शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्म ज्योति नहा रही हूं। कितना सुंदर अनुभव है यह इस नुमा शाम के समय ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणें मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से सारे विश्व की ओर फैल रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मस मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। दाग चेतन ही रहा हूं मुझ चेतन हीरे से शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। ओम शांति।
अवश्य ही नुमा शाम का योग सभी ने एंजॉय किया होगा, क्लास भी एंजॉय की होगी। प्राता जी अपना अमूल्य समय निकाल कर आए, एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।